दया सिंधु की स्नेह मिटूबी इतना आनंद पाए, दया सिंधु की स्नेह मिटूबी इतना आनंद पाए, बन कर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए।
ओम शांति। बाबा ने जब यज्ञ की शुरुआत की तो शुरू शुरू में तो बाबा के पास बहुत बहनें आई थी, आप सबने सब कहानियां सुनी हैं। भाई तो दो चार थी, मेजॉरिटी तो बहनें थी। उस समय हो सकता हम सब पिछले जन्म में रहे होंगे, साकार में तो हम नहीं थे, लेकिन दादियों से हमने बहुत कहानियां सुनी हैं उस समय की। जब हम लोग आपकी तरह ट्रेनिंग में आया करते थे ना, आते थे, तो उस समय आजकल जैसी ट्रेनिंग नहीं होती थी, उस समय सब दादियां थी, कोई एडवांस पार्टी में नहीं गई थी। तो सब दादियां जो भी क्लास कराने आती थी ना, वो कराची की ही बातें सुनाती थी, वही होती थी पूरी ट्रेनिंग में, और कुछ नहीं होता था। महीना भर में जो 14 साल भट्टी में बाबा ने किया, बाबा के चरित्र, बस वही होता था। आजकल तो बहुत सिलेबस हो गया है, बहुत तरह की बातें सिखाते हैं। तो उस समय की कुछ बातें मुझे याद हैं और उनसे कनेक्टेड कुछ और बातें याद हैं, मैं आपको वो सुनाऊंगी। अभी थोड़े दिन पहले हमने मैगजीन में एक दादी गुलजार का अनुभव डाला था कि एक बार बाबा ने हमको एक वो सुआ होता है जिससे टांका लगाते हैं, बोरी को टांका लगाते हैं, मोटा सुआ एक होती है सुई, तो बाबा ने किसी बात में कहा होगा कि सुए से ऐसे टांका लगाओ, तो गुलजार दादी ने उसमें लिखा था कि हम छोटे बच्चे थे तो हमने कहा बाबा हमारे हाथ बड़े कोमल हैं और ये सुआ तो हमारे हाथ में चुभ जाएगा। तब बाबा ने कहा बच्ची 84 जन्मों में तुम हर बार कन्या थोड़े बनी हो, कभी मेल बनी हो कभी फीमेल बनी हो, तो तुम्हारे अंदर दोनों संस्कार है। तो जैसे भाई इस तरह के काम फटाफट कर लेते हैं, तो बाबा ने कहा अपने उस संस्कार को इमर्ज करो और ये सेवा तुम कर सकती हो। तो दादी ने लिखा था कि हमारा देह अभिमान एक सेकंड में टूट गया, हमको रियलाइजेशन हुई कि भाई सचमुच चोला ही तो फीमेल का है, आत्मा तो ना मेल है ना फीमेल। तो ऐसे बाबा ने शुरू शुरू में बहुत सारे अभ्यास करवाए जिससे अमीर घर की बहनों का भी देह अभिमान टूटे और फीमेल होने का देह अभिमान भी टूटे। ये देह अभिमान चाहे भाई हो चाहे बहन हो, टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना अपन सेवा नहीं कर सकते। सेवा वही करेगा जो आत्म अभिमानी होगा। और बाबा कहते हैं सतयुग में सभी आत्म अभिमानी होंगे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, वहां सेवा करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन उस आत्म अभिमानी होने का फायदा यह है कि उस दुनिया में प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन आज देह अभिमान होने का परिणाम ये है कि हर घर है, हर घर में, हर जगह, हर संस्थान में प्रॉब्लम्स। तो संगम युग एक अति विशेष युग है। छोटा सा युग है लेकिन बड़ा करामात वाला, बड़ा चमत्कार वाला, बड़ा विशेष युग है। तो इस युग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शिव बाबा ने हमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाई है ब्रह्मा बाबा के माध्यम से, जिसमें उसने बहनों के अंदर भाइयों वाले संस्कार भर दिए और भाइयों के अंदर बहनों वाले संस्कार भर दिए। संगम युग में इसी समय। तो परिणाम क्या निकला कि जो चोले का अभिमान था वो खत्म हो गया, और जितना ये चोले का अभिमान खत्म होता उतनी दृष्टि शुद्ध बनती है, नेचुरल बन जाती है, फिर आत्मा ही नजर आती है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। ये हमारा पहला पाठ है ना, हमारे नंबर इसी में कटते हैं। और जिस कुमारी का ये पाठ पक्का है कि मैं फीमेल नहीं हूँ, वो कुमारी सेकंड में आगे चली जाती है। और जो कुमारी इसी में उलझ के रह जाती है मैं तो फीमेल हूँ, तो वो बेचारी उबर ही नहीं पाती है इस संस्कार से, जबकि बाबा सबसे पहले इसी संस्कार को खत्म करते हैं। अभी आप रोज के जीवन में देखते हो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आज के समय में 8 साल से छोटे बच्चे, पुराने जमाने में 15 साल तक के, लेकिन आज के समय में, क्योंकि आजकल मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, 8 साल तक का लड़का और लड़की देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। अगर आप लड़के को शर्ट फ्रॉक पहना दो तो वो लड़की लगने लगेगा, और लड़की को शर्ट पहना दो तो वो लड़का लगने लगेगी। चेहरे के ऊपर कोई भी मेल या फीमेल का चिन्ह नहीं होता है 8 साल तक, उसके बाद फिर थोड़ा सा फर्क पड़ना शुरू होता है। हमारा जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, आप सबने देखा होगा, उस चित्र में भी दोनों के फेस में कोई अंतर नहीं है। अगर आप वही कपड़े उतार के लक्ष्मी को पहना दो तो वो नारायण लगने लगेगी। बहुत ध्यान से देखना, मैंने बहुत बार बहुत ध्यान से देखा है, नाक में, आँख में, कान में, गाल लंबाई चौड़ाई किसी चीज़ में अंतर नहीं है। दोनों के बाल भी लंबे हैं, कान नाक में भी गहने पहने हैं, बस इतना फर्क है कि वो थोड़ा सा कुर्ता है और वो थोड़ी साड़ी है, बस इतना ही फर्क। इसलिए जो विदेशी लोग आती है ना, वो पहचान नहीं पाते कि इसमें मेल कौन है। हाँ जी, पंजाब और गुजरात की 4-5 बहनें बाहर जाएं, पंजाब की 4 बहनें चली जाएं, गुजरात की 4 बहनें, अच्छा दोनों में से एक या दोनों, एक, अच्छा गुजरात की 4 बहनें बाहर चले जाओ भाई, 4 बहन। तो विदेशी जब आती है ना, ये जो मैं बात बता रही हूँ ये बहुत गहरी बात है, इसको ध्यान से सुनना, तो वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इनमें से मेल कौन है और फीमेल कौन है, भाई लक्ष्मी मेल है या नारायण मेल है, वो समझ नहीं पाती हैं, क्योंकि चेहरे पे कोई चिन्ह नहीं है। और जो 8 साल से छोटे बच्चे हैं उनको हम पहचान नहीं पाते हैं, ये लड़का है कि लड़की है। कई बार तो माँ की गोदी में होता है तो पूछते हैं, भाई तेरा बेटा है कि बेटी है ना। तो 8 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर विकार नहीं होते, और लक्ष्मी और नारायण के अंदर भी विकार नहीं होते, वो उनकी सतयुग की स्तोप्रधान अवस्था है और बालपन इस जीवन की स्तोप्रधान अवस्था है। तो यहाँ की स्तोप्रधान अवस्था और वहाँ की स्तोप्रधान अवस्था किसी सीमा तक सिमिलर है, बराबर है। इसलिए छोटे 8 साल तक के बच्चे बच्ची आपस में खेलते हैं, घूमते हैं, हाथ पकड़ते हैं, माँ बाप को भी कोई एतराज नहीं होता, भय नहीं लगता है। थोड़े से बड़े होंगे तो माँ बाप को डर लगेगा, बेटा लड़कों के साथ मत खेलना, लड़की को बोलेंगे, लड़के को बोलेंगे, हैं माँ बाप अलग अलग करेंगे। तो सतयुग में कैसा जीवन होगा उसकी एक झलक आप 8 साल से छोटी आयु के बच्चे और बच्चियों को देख करके लगा सकते हो। नेचुरल प्योरिटी होगी, लक्ष्मी और नारायण की प्योरिटी ऐसी नेचुरल होगी, छोटे बच्चों को ना काम का पता, ना क्रोध का, ना लोभ का, ना अहंकार का, ना ईर्ष्या का, ना द्वेष का। उस बच्चे की माँ से किसी का झगड़ा हुआ हो वो उसकी गोदी भी चढ़ जाएगा, उसको ये भी नहीं पता कि ये मेरी माँ से बोलती नहीं है, मेरी माँ से इसकी बनती नहीं, बच्चे के मन में नहीं है ना। तो फिर क्या होता है, धीरे 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 शरीर के हार्मोन्स में परिवर्तन आना शुरू होता है। सतयुग में मेल और फीमेल के बनावट में, स्ट्रक्चर में केवल 2% का अंतर होगा। 98% सिमिलैरिटी होंगी जो बॉडी के हार्मोन्स हैं उनमें, और केवल 2% अंतर होगा मेल फीमेल में। और कलयुग आते आते केवल 2% सिमिलैरिटी है और 98% अंतर है। जब अंतर ज्यादा होता है किसी चीज में तो आकर्षण होता है, और जब सिमिलैरिटी होती है तो जैसे बहनों का बहनों में नहीं है, क्योंकि वैसी बॉडी मेरी, वैसी बॉडी बहन किस बहन की, वैसी 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 है ना, बहनों का बहनों में नहीं है ना। तो जब समानता है, सतयुग में समानता है बॉडी में, इसलिए मेल फीमेल का आपस में कोई आकर्षण नहीं है। यहाँ अंतर है, जैसे ही 10 साल का, 11 साल, 12 साल का बच्चा होगा, लड़के का शरीर अपने ढंग से डेवलप होगा, लड़की का शरीर अपने ढंग से डेवलप होना शुरू होगा, और फिर धीरे 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 भाइयों का शरीर अपने ढंग से सख्त सख्त होगा, बहनों का सॉफ्ट सॉफ्ट शरीर रहता है, उनके शरीर पे आप लोग जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है, चेहरे पे चिन्ह आने शुरू होते हैं। तो इस तरह से तो आकर्षण का जो मूल कारण है ना, वो हार्मोन्स का डिफरेंस। बॉडी में जब त्रेता युग में थे हम, तो नर नारी दोनों गद्दी पर बैठते थे। जब द्वापर युग शुरू हुआ तो राजा लोग गद्दी पर बैठते थे, रानियां गद्दी पर बैठना छोड़ चुकी थी। उसके बाद द्वापर का एंड आया, कलयुग आया। कलयुग आया तो महिला की तो बिल्कुल ही कदर कम हो गई। मुस्लिम आए, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, तो क्या हुआ? जब प्रथम बार विदेशी भारत में आए, आपको पता है किस तरह से डाउनफॉल हुआ, और बाबा कैसे अपने को अपलिफ्ट करता है, ये एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक और ऐतिहासिक कहानी है। जब सोमनाथ का मंदिर लूटा गया तो वो पहला आक्रमण था। उससे पहले हमारा देश नारी प्रधान था, मातृ प्रधान, माँ घर की लीडर होती थी। बच्चे को संस्कार देना, घर का धन दौलत संभालना, आए गए की संभाल, सारी बातें नारी के हाथ में होती थी। जब विदेशी आक्रमण हुए तो क्या हुआ? जब विदेशी आक्रमण हुए तो युद्ध करने की जरूरत पड़ी, शारीरिक बल की जरूरत पड़ी। उससे पहले तो युद्ध की, शारीरिक बल की जरूरत ही नहीं थी, और महिलाओं के पास बौद्धिक बल था, त्याग का, प्रेम का बल था, इसलिए उनका पलड़ा भारी था। जब द्वापर युग में आक्रमण हुए और जब युद्ध में भाई लोग जाने लगे और उन्होंने अपना शारीरिक बल दिखाया तो वो हीरो बन गए, समझा? लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर देश बचेगा तो पुरुषों की बदौलत बचेगा, अगर विदेशियों को बाहर खदेड़ेंगे तो ये योद्धा लोग खदेड़ेंगे, भाई इनकी केयर करो, इनको खिलाओ पिलाओ, इनको आगे रखो, क्योंकि ये देश के रक्षक। और महिलाओं को क्या कहा जाने लगा कि ये तो खुद की भी रक्षा नहीं कर सकती, अगर किसी विदेशी ने आक्रमण कर दिया तो इनकी रक्षा हमें करनी पड़ेगी। और इससे पहले महिला का संतान उत्पन्न करना एक गुण माना जाता था, भाई दुनिया मां नहीं होगी तो ये संसार रहेगा कैसे। लेकिन जब उन्होंने आक्रमण किया तो महिला का संतान उत्पन्न करना एक अवगुण माना जाने लगा, कैसे? इसलिए कि इसको भी संभालो और इसके बच्चे को भी संभालो, मुसीबत। अगर विदेशियों ने आक्रमण कर दिया तो इसको तो चलो भगा लेंगे, बच्चे को उठा के कौन भागेगा, और अगर महिला के पेट में बच्चा है तो उसको कौन उठा के भागेगा। तो वो बेचारी एक चीज बन गई, धन की भी रक्षा करो महिला की भी रक्षा करो, समझ में आ रही है बात। चीज बन गई, चीज जीवित नहीं, वो एक चीज बन गई। जैसे सोने को संभालना है पैसे, ऐसे ही इसको भी संभालना है, ये भी एक चीज है। तो इन सारी चीजों का मालिक कौन बन गया? पुरुष बन गया, घर का, धन का और नारी का। तो वहां से क्या हुआ, पुरुष पहले दर्जे का और नारी दूसरे दर्जे की। यहां से नारी बिल्कुल ही नीचे गिरा दी गई। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि भाई ये विदेशी लोग आक्रमण करते हैं, महिलाएं असुरक्षित हो जाती हैं, इनके चेहरे को देख के कोई आकर्षित हो जाता है, तो इनको ढक दो। नारियों को घूंघट आ गया। फिर बाप ने ये कहा कि लड़की बड़ी हो जाएगी, चिंता हो जाएगी, इसलिए बस जरा सा मुंह ऊपर करे, 12 साल की हो तो इसकी शादी कर दो, मेरा पीछा छूटे, मेरी जिम्मेवारी खत्म, अगले संभालेंगे, कौन संभाले इसको, यहाँ से रक्षा करो, वहाँ से रक्षा करो, वहाँ से रक्षा करो। फिर लोगों ने क्या कहा, सब जगह पुरुष प्रधान, मंदिर में जाओ तो पुरुष, सभा में जाओ तो पुरुष, दरबार में जाओ तो पुरुष, स्कूल कॉलेज मदरसे में जाओ, ये पढ़ने वाले गुरु भाई, बाहर वालों के आक्रमण तो थे ही, फिर देहभिमान बढ़ा तो बोले कहीं भी भेजो, वहां पुरुष ही पुरुष है, तो इसको कहीं बाहर भी मत भेजो। तो जो द्वापर के शुरू शुरू में सभा सोसाइटी में भाग लेती थी, भाषण करती थी, अपने व्यू प्रकट करती थी, वैदिक संस्कृति में ऐसा दिखाते हैं, कई महिलाओं को अपाला, घोष, विश्ववारा, गार्गी, इनके नाम आते, लेकिन जैसे जैसे विदेशी आक्रमण बढ़े वैसे वैसे ये कह दिया गया कि इसको कहीं बाहर मत जाने दो, इज्जत का सवाल है। इसलिए घर में रोटी बनाए, झाड़ू लगाए, कपड़े धोए, और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है इसको, भक्ति भी क्या करेगी करके, घर में पूजा कर ले, मंदिर में न जाए। ये काला युग था नारी के लिए। इतिहास में इसके लिए एक नाम आता है असूर्य पश्या, उसको सूरज देखने की भी छुट्टी नहीं थी। अब जब नारी का मनोबल इतना गिर गया, उसको बता दिया गया कि तू किसी काम की नहीं है सिवाय बच्चे पैदा कर सकने के, तेरे को कुछ नहीं आता, तो बेचारी को मशीन बना दिया बच्चे पैदा करने की, जब तक जिएगी यही काम धंधा करेगी, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो ये युग चला जी लगभग मुसलमानों का राज समझ लो सारा। फिर मीरा का जो जमाना था, उस समय के कुछ अच्छे चिंतक हुए, तुलसी, सूरदास, कबीर, ये उस समय के कुछ चिंतक हैं, इन्होंने कुछ कुछ लिखा महिलाओं के फेवर में, लेकिन इतने बड़े संसार पे उसका कुछ असर नहीं हुआ, इनकी आवाज दब के रह गई, मीरा को बड़े कष्ट उठाने पड़े। वो भक्ति काल माना जाता है इतिहास में, लेकिन भक्ति काल में भी नारी की दशा कोई बहुत अच्छी नहीं सुधरी, एकाद भगत बनी, सहजोबाई बनी, मीरा बनी, इन लोगों को भी समाज से बहुत संघर्ष करना पड़ा। मीरा ने एक पत्र लिखा था, तुलसीदास और मीरा समकालीन थे, मीरा ने तुलसीदास को पत्र लिखा था कि लोग मुझे बहुत सताते हैं, मैं क्या करूं। तुलसीदास ने अपने ढंग से उसे उत्तर दिया था, इतिहास में इसका वर्णन आता है कि भगवान का जो बनता है उसे इन अवस्थाओं में से गुजरना ही पड़ता है। उसके बाद जी भारत में आए अंग्रेज। जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों की जो कल्चर है, मुस्लिम कल्चर तो नारी को बुर्का पहनाती है, दबा के रखती है, लेकिन इंग्लिश कल्चर में नारी को बहुत छुट्टी है। तो उस माइंड के लोग जब यहाँ आए और उन्होंने भारत की महिलाओं को दबा हुआ देखा, तो उनके मन में आया इनको उठाना चाहिए। बाई नेचर वो लोग नारी का फेवर करते हैं, अंग्रेजों का ये गुण है। जब उनका जमाना था तो चाहे नारी आधी रात भी निकल जाती थी, उसको किसी का भय नहीं होता था। उनके जमाने में अंग्रेज लोग नारी के चरित्र पर उंगली नहीं उठाते थे, दृष्टि उनकी शुद्ध थी और अवगुण उनमें बहुत थे, लेकिन ये अवगुण नहीं था उनमें। तो उन्होंने क्या किया कि भारत की नारियों को उठाने, जागृत करने के लिए कानून बनाए, जैसे सती प्रथा का कानून बना, बाल विवाह का कानून बना, विधवा विवाह का कानून बना, बहुत सारे कानून बने। सती प्रथा भी द्वापर युग में जब बाहर के लोग आए ना तब चालू हुई, बाल विवाह भी तब चालू हुआ। सती प्रथा चालू इसलिए हुई कि अब इसका, अगर उसको बच्चा है तो सती नहीं होती थी, भाई बच्चे को कौन संभालेगा, अगर बिना बच्चे के पति मर जाता था तब उसको जबरदस्ती सती किया जाता था, जबरदस्ती करते थे। राजा राममोहन राय का नाम आपने सुना होगा। राजा राममोहन राय कलकत्ता में थे और उनकी एक भाभी थी, उसका नाम था सुमन मंजरी। तो उसके बड़े भाई ने शरीर छोड़ दिया और अभी भाभी को कोई बच्चा था नहीं, तो लोगों ने कहा भाई इसको तो सती होना पड़ेगा। तो बहुत ही छोटी आयु की थी, एक तो छोटी आयु में शादी कर देते थे, बहुत सुंदर भी थी, बहुत अच्छी भी थी। तो उसने कहा मैं सती नहीं होना चाहती। लोगों ने कहा नहीं, कैसे नहीं होना चाहती, होना पड़ेगा। तो वो जो उसकी चिता जलाई गई ना, उस चिता के पास जबरदस्ती उसको डाला गया और जब वो उठ के भागने लगी तो सैकड़ों लोग बड़े बड़े बांस लेकर के ना चारों ओर खड़े हो गए। वो इधर भागे तो इधर से बांस मारी, लंबे लंबे बांस लेके इधर से भागे तो इधर, भागे तो इधर, भागे तो वो चीखती रही, चिल्लाती रही और लोगों ने जबरदस्ती बांसों से धकेल धकेल करके उसको चिता में डाल दिया और वो जल गए। तो ये दृश्य देखा राजा राम मोहन राय ने, उसका कलेजा एकदम फट गया, भाई इतनी क्रूरता, ऐसा अत्याचार। तो उसने वहीं पे प्रण किया कि जब तक मैं भारत से सती प्रथा का अंत नहीं करूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। फिर उसने एक अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव था, नाम सुना होगा आपने, यहाँ का वायसराय वगैरह कुछ बन के आया था, उसके साथ मिल करके उसने कानून बनवाया कि सती प्रथा अवैध है, कानूनन इसका विरोध किया जाए। तो इस तरह से भारत में, ये 1800 कुछ की बात है, कानून बन गया। फिर भी चोरी छिपे सती लोग होते रहे, सतियों के मंदिर बनते रहे फिर भी, लेकिन फिर अंत में कुछ शिक्षा का प्रचार हुआ और ये प्रथा बिल्कुल बंद हो गई। बाल विवाह बंद नहीं हुआ, वो अभी भी चालू है बहुत स्थानों पे। विधवा विवाह तो चलो अलाउ हो गया, सती प्रथा को कानूनन तो बिल्कुल बंद कर दिया गया है, लेकिन कोई महिला अगर कहीं चोरी छिपे भारत के किसी कोने में ऐसा कोई कृत्य कर लेती है, पुलिस को पता पड़ जाए तो वो तुरंत पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस के पते के बिना मर्जी से कर लिया अलग बात है, अदरवाइज कोई दूसरा उसे सती बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। थोड़े दिन पहले कहीं का समाचार आया था, थोड़े दिन पहले क्या, जब हम लोग छोटे थे, आज से समझो 30-35 साल पहले, हमने समाचार सुना था कि किसी जगह एक महिला, अखबारों में बड़े दिनों तक उसकी चर्चा आती रही, पुलिस गई क्यों हुआ, फिर जी किसी ने कहा जी इस कारण से हुआ कि फिर वो लंबा चौड़ा लफड़ा बन गया। तो आजकल अगर ऐसा कोई कर भी ले तो लफड़ा बन जाता है, वो सहज नहीं है इतना। बाल विवाह तो लोग कर देते हैं चोरी छिपे, लेकिन ये तो मृत्यु है ना, मृत्यु तो फिर कहीं से भी आवाज निकल जाती है, कानूनन विरोध है, बड़ा भारी विरोध है इसका। तो फिर क्या हुआ, अंग्रेज लोगों के आने से जगह जगह कन्याओं के स्कूल खुले। महाराष्ट्र में कोई वो थी ज्योतिबा फुले, उसने कन्याओं के लिए बहुत प्रयास किया, और भी यहाँ वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए जिन्होंने कन्याओं की शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किया। जो राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री था, क्या नाम था उसका, किसी को ध्यान में है, मुझे नाम ध्यान में नहीं है, वो एक टीचर था, तो बहुत ही साधारण सा आदमी था और एक अनपढ़ बहन के साथ उसकी शादी हुई थी, लेकिन शायद वो लड़की मर गई। तो उस आदमी के मन में ये ख्याल आया कि जिस गांव वालों ने मुझे वो कन्या दी थी, कहते ना कन्यादान, देखो पहले जमाने में लोगों के विचार कितने अच्छे होते थे, जिस गांव वालों ने मुझे कन्यादान में दी थी मैं उस गांव का कर्तव्य हूँ, इसलिए मुझे उस गांव के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो उस गांव में चला गया और एक पेड़ के नीचे जा कर के बच्चों को फ्री में पढ़ाने लगा। लोगों ने कहा इसकी बीबी मर गई ना, इसलिए पागल हो गया, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, देखो भटकता भटकता कहाँ अपने ससुराल में आ गया। लोग बोलते रहे लेकिन उसने किसी की बात पे ध्यान नहीं दिया। मैं नाम भूल रही हूँ उसका, वो राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री बना। तो जी उसने गांव वालों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन किया कि आपने मुझे कन्या दी थी, मैं आपका कर्तव्य हूँ, आप अपनी कन्याएं मुझे दो, मैं उनको पढ़ाऊंगा। तो कुछ लोगों ने बात सुनी, आजाद हुआ हुआ था भारत, दो चार कन्याएं यानी शुरू हुई, बहुत जी लगा के पढ़ाया उसने, वो कन्याएं अगली क्लास में चली गई और कन्याएं आई, एक छोटा स्कूल बना। फिर लोगों ने उसकी मेहनत देख के उसको एक छोटी सी जमीन दी और आज वो स्थान राजस्थान में वनस्थली के नाम से फेमस। सुना है आपने वनस्थली? कन्याओं का एक बहुत बड़ा कॉलेज कह लीजिए, यूनिवर्सिटी कह लीजिए, वनस्थली के नाम से है राजस्थान में, जहाँ भारत के कोने कोने की लड़कियाँ आकर के पढ़ती हैं। तो उस व्यक्ति ने उसकी शुरुआत की और बाद में वो बहुत ही फला फूला, और भी क्षेत्रों में उसने बहुत मेहनत की और इस उसकी इस मेहनत और समाज सेवा को देख करके उसको राजस्थान का मुख्यमंत्री पद, उस जमाने में इतने इलेक्शन वगैरह नहीं होते थे, ऐसे ही लोगों ने उसको नॉमिनेट कर दिया और मुख्यमंत्री बना दिया उसके गुणों को देखकर। सचमुच बहुत गुणवान था। उस समय की राजनीति में फिर भी कुछ दम था, अभी तो राजनीति बिल्कुल लास्ट स्टेज में आ गई। तो इस तरह से कन्याओं के लिए प्रयास होते गए, महिलाओं में जागृति आती गई, पढ़ाई हुई, फिर नौकरी की छूट मिली। और देखो शिव बाबा जब आया 1937 में, तब तक कुछ कुछ था सिंध में, तो आपको मालूम है ना महिलाएं घूंघट निकालती थी। ब्रह्मा बाबा की आपने जीवन कहानी पढ़ी होगी, दादी चंद्रमणि बंद गाड़ी में जाती थी, हैं हवा भी नहीं लगनी चाहिए, ऑक्सीजन भी बंद, इसीलिए बहनें बीमार ज़्यादा होती थी उस जमाने में, बेचारियों का गला नाक बंद कर देते थे, हैं सांस नहीं आएगी अच्छी तो फिर बीमारियां तो लगेंगी ना, और अब मुंह खुला है तो भी ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो बाबा आया 1937 में, बाबा को कैसी माताएं बहनें मिली, दबी चिथी स्वमान रहित अनपढ़ भोली भाली, क्या कहेंगे, बिल्कुल बकरी जैसी, डरपोक, सब डरपों की तो थी। बाबा को ऐसी कन्याएं बहनें मिली, पढ़ी लिखी बाबा को कहाँ मिली, एक दादी मम्मा थोड़ी बहुत पढ़ी थी, मेजोरिटी तो अनपढ़ी थी। तो बाबा ने उनको क्या सिखाया, बाबा ने कहा बच्ची तुम मेल नहीं हो, तुम फीमेल नहीं हो, तुम अपने को मेल समझो, तुम सब मेरे बेटे हो, बेटियां नहीं हो। मुरली में बाबा कहता है ना, तुम सब बच्चे मेरे वारिस हो, बच्चियां नहीं हो, तुम सब मेरे बच्चे हो। शिव बाबा के तो बच्चे ही हैं सब आत्माएं, बच्चियां तो हैं ही नहीं, है ना। तो बाबा ने ये बात कूट कूट करके भरी कि तुम फीमेल नहीं हो, और भाई लोग जो काम कर सकते हैं वो सब काम तुम भी कर सकती हो। इसलिए बाबा ने वो सारे काम हमारी दादियों से करवाए, हैवी हैवी चीज़ें उठाना, भाइयों वाली भाइयों की तरह गाड़ियाँ चलाना, भाइयों की तरह कपड़े पहनना, भाइयों की तरह से हैवी चीज़ें उठाना, हैवी वर्क करना, गाड़ियाँ खोलना ठीक करना, सब काम करवाए ना। किस लिए करवाए? इसलिए कि फीमेल पना खत्म हो जाए, क्योंकि ये 2500 साल का दब्बू पना है। फीमेल पना माना क्या? 2500 बरस का दब्बूपना, नथिंग एल्स। अच्छा, जब आदमी को दबाया जाता है तो उसमें और कई नेगेटिव चीजें घर कर जाती हैं, जैसे रोना, दबा हुआ आदमी रोएगा बात बात में, रूठ जाना, हठ कर लेना, फीलिंग में आ जाना, अनुमान लगाना, शंका, ये सब दबी चिथी मानसिकता के चिन्ह है। मोह करना, अटैचमेंट में आ जाना, ये दबी हुई मानसिकता के चिन्ह। जो हाई क्वालिटी की मानसिकता होती है ना, उनमें ये चीज़ें नहीं होती, वो इनको क्रॉस करता है। लेकिन जो लो क्वालिटी की मानसिकता, उसमें ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो वो सब महिलाओं में भर गई, वो क्या करें बेचारी। जब ऊंचे उठने की जगह नहीं मिली तो वो सारी गंदगी उनकी बुद्धि में भर गई, नहीं तो वो उससे ऊंची उठती, नहीं उठ सकी, किसी ने उठाया नहीं, किसी ने मार्ग बताया नहीं। तो बाबा ने आकर के क्या सिखाया कि बच्चे नष्टो मोहा बनो, शक्तिशाली बनो, अपने को शेरनी समझो, अपने को फीमेल मत समझो। तो जब हम सोच ऐसी रखते हैं कि मैं मेल हूँ, और जब हम कर्म भी ऐसे करते हैं, तो हमारे शरीर के हार्मोन्स इसी जीवन में बदल जाते। पहले हार्मोन्स में अंतर था ना, भाइयों के हार्मोन्स अलग प्रकार के, बहनों के अलग प्रकार के, केवल 2% सिमिलैरिटी थी। लेकिन जब हम ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं, जब हमारा चिंतन पॉजिटिव हो जाता है, जब हम अपने को आत्मा समझना शुरू कर देते हैं, तो वो जो फीमेल वाले हार्मोन्स हमारे अंदर थे ना, वो धीरे धीरे रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। घर में रहते जो बने थे, वो धीरे धीरे रिलीज होने शुरू हो जाते, और जैसा चिंतन वैसे हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते। इसलिए कई बार मैं देखती हूँ, हमारी जो बड़ी बहनें हैं ना, उनको दूर से देखो तो वो भले साड़ी पहने होती हैं, फिर भी लगेंगे कोई भाई बैठा हुआ है। जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी बहनें, छोटी कन्याएं तो कर लगती हैं, क्योंकि अभी कपड़े भी थोड़ा सूट वूट पहना होता है तो अलग प्रकार की, लेकिन मेजॉरिटी हमारी बड़ी बहनें। अब दादी जानकी को कोई नीचे से यहाँ से ना देखे तो एकदम पुरुष जैसी फीलिंग आएगी। दादी गुलजार में पुरुष जैसी फीलिंग आती है, फीमेल जैसी फीलिंग नहीं आती है। तो वो हार्मोन्स टोटली चेंज हो जाती है। इसलिए बाबा ने संगम युग में क्या सिखाया कि नर अपने आप को ये समझे कि मैं नारी हूँ। नारी नहीं, बाबा तो कहता था चतुर्भुज समझो, दो हाथ मेल के और दो हाथ फीमेल के। तो भाइयों से बाबा वो सारे काम करवाता है। देखो मधुबन में भाई लोग सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, पानी सारा भाई करते हैं। जो घरों में फीमेल काम करती है ना मधुबन में, वो सारे काम भाई करते हैं, भले कितने भी पढ़े लिखे हों। टोली बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो काम करते करते उनको ये भावना आ गई कि मैं बाबा की सजनी हूँ, बाबा का घर संभाल रही हूँ, बाबा के इतने मेहमान आने वाले हैं, मुझे उनके लिए सब्जी बनानी है। जैसे घर में एक महिला संकल्प करती है, ऐसे उनको संकल्प आता, तो भाई वाला देह अभिमान टूट गया। और बहनों को बाबा ने क्या काम दिया, दुनिया में तो प्रवचन गुरु लोग करते हैं, तो यहाँ देखो बहनों को क्या काम दिया, मुझे क्या सुनाना है, बहनों को आने वाली हैं, ये लेसन सुनाना है, ये सब्जेक्ट पे पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। तो उनको जो दुनिया में पुरुष लोग काम करते हैं ना, वो काम दे दिए। तो परिणाम क्या निकला कि हमारे हार्मोन्स में जो दूरी थी वो हम समान हो गए। भाइयों को अब ये लगता है कि हमने जो लौकिक दुनिया में काम किए, ऑफिस संभाला, समझो हम ऑफिस में काम करते, वो कहते हम लौकिक दुनिया में ऑफिस संभालते थे, वही काम बहन जी कर रही है। और हम क्या कहते, हमने घर में रोटियां बनाई, वही काम ये भाई कर रहे हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। इसलिए अगर संगम युग में हमको सक्सेसफुल होना है तो ये समझना है कि मैं मेल हूँ, मैं आत्मा भगवान का बेटा हूँ। तो जो नारी सुलभ चंचलता है, नारी सुलभ श्रृंगार का शौक है, ये 2500 साल का शौक है ये नारी चोले को, क्योंकि लोगों ने उसको सिखाया ये कि भाई तू इतनी सुंदर बन के बैठ कि तू अपने आदमी को आकर्षित कर सके। उसको सुंदर क्यों बनाया गया, यही उद्देश्य था ना, शादी में इतना सब पहनाएंगे, आदमी चाहे बकरे की तरह बड़े बड़े बालों वाला हो, भैंसे जैसा हो, नो प्रॉब्लम लेकिन औरत को कहेंगे सज धज के सुंदर बन के बैठ, ताकि वो आदमी को आकर्षित कर सके। अब वो मानसिकता छोटी छोटी कन्याओं में भी आ जाती है दुनिया में। 16 साल की कन्या है, वो भी जी शीशे के आगे बैठी है, ज्ञान में आने से पहले ये मानसिकता सब कन्याओं में रही है, अब ज्ञान में आप 2 साल से आए हो, 4 साल से आए, इससे पहले आपने घरों में जो देखा हो, तो वो मानसिकता का जो अंदर संस्कार है ना, वो आपको बाधा डालेगा आगे बढ़ने में। थोड़ी मैं सुंदर तो बनूं, काली लग रही हूँ, थोड़ी अच्छी ऊंची एड़ी तो पहनूं, छोटी लग रही हूँ, हैं थोड़ी बाल तो ठीक से बनाऊं, थोड़ी ठीक तो लगूं। ठीक है, ठीक लगना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि वो देह अभिमान में काउंट हो जाए। फिर अपन संगम युग की साधना कब करेंगे? जैसा शरीर दिया बहुत बढ़िया, भगवान को पसंद आ गए, जैसा भी है कैसा भी है भगवान ने पसंद कर लिया, बाकी कौन बचा, है ना? इसलिए अब हमारा वो संस्कार जागृत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। भाई देखो, भाइयों को शौक होता है क्या सजने का? आप विचार करो, ये गए और ये आए, सीधी कंघी मारी, 1 मिनट। तो हम बहनों के अंदर भी वही संस्कार होना चाहिए। तो समझ में आई बहनों बात? ये हमारी जो पवित्रता का सब्जेक्ट है ना, उसका बेस सतयुग में प्योरिटी नेचुरल क्यों है? बिना मेहनत के इसलिए नेचुरल है, जैसे यहां 8 साल से छोटे बच्चों में प्योरिटी नेचुरल होती, उनकी स्तो प्रधान अवस्था, बच्चों की स्तो प्रधान अवस्था। हम बड़े हो गए, जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर रजो अवस्था आती है, फिर तमो अवस्था आती है, फिर तो बिल्कुल तमोगुणी अवस्था आ जाती है ना। तो अभी हम चलो सतो अवस्था को तो पार कर गए शरीर के हिसाब से, रजो अवस्था में है शरीर के हिसाब से। अब ज्ञान में आ गए तो रजो अवस्था से हम तमो की तरफ नहीं जाएंगे, रजो से हम वापस सतो की तरफ लौटेंगे। हम बीच में हैं, ये वो स्थान है जहां से तमो की तरफ भी जाया जा सकता है, सतो की तरफ भी। तो हमारे लिए सतो की तरफ लौटना सरल है, आप 20-22 साल के हो और वो अवस्था गई, अभी 10-12 ही साल हुए हैं, तो आप पुनः लौट सकते हो उस अवस्था, है ना? बाबा मुरली में कहता है अभी तो बच्चे रजो तक आए हैं, अभी तो बच्चे सतो, क्या तमो के बाद क्या होता, रजो, हाँ सतो तक आने में अभी बहुत टाइम है, ऐसे करके बाबा मुरली में बोलता है। जैसे जैसे हमारी चढ़ती कला होगी ना, जीरो कला से, कलयुग माने जीरो कला, फिर हमारी चढ़ती कला हुई, मान लो 8 कला तक आत्मा पहुंच गई, तो कहेंगे अभी रजो अवस्था, द्वापर युग जैसी। सारे लोग कलयुग में है लेकिन मेरी स्थिति द्वापर युग जैसी हो गई, मेरे में वो उतने वैल्यू आ गई, उतनी ताकत आ गई। फिर हम और आगे बढ़े, सतो तक पहुंचे, कहेंगे अब ये त्रेता जैसी आत्मा हुई है। फिर और पुरुषार्थ करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे, फिर जाकर के कहेंगे अब ये सतयुग जैसी आत्मा हो गई है। जब आत्मा सतयुग जैसी हो जाएगी तब पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा, तब तक हम लगे हुए हैं। तो इसको बाबा कहता है चढ़ती कला, डे बाय डे तुम बच्चों की चढ़ती कला है। संगम युग में चढ़ती कला का वरदान है। जैसे कोई आदमी नाव में बैठ जाए, वो कुछ भी ना करे लेकिन नाव तो चलेगी ही ना, किनारे पे तो पहुंचेगी ही, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सब संगम युग के नाव में बैठ गए, अब खेने वाला इसको खे रहा है, इसलिए किनारे पर तो पहुंचना ही है। लेकिन हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि हम तीव्र गति से मंजिल पर पहुंचे। अब जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ तीव्र गति से किया तो 33 साल में विकर्म विनाश हो गए। जो तीव्र गति से करेगा उसके विकर्म कम समय में विनाश हो जाएंगे, और जो स्लो स्लो करेगा विकर्म होंगे तो सही विनाश। बाबा ने कहा बाप समान सबको बनना है, संपन्न सबको बनना है, लेकिन उसकी स्पीड स्लो रहेगी। तो एक तो स्पीड तीव्र हो, एक तो ये है पुरुषार्थ का उद्देश्य, स्पीड को बढ़ाना। और दूसरा उद्देश्य ये है कि स्पीड को बढ़ाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा, औरों को आप समान बना सकेंगे, नहीं तो कम स्पीड से भी मंजिल तो आ जाएगी लेकिन पद कम मिलेगा, देरी लगेगी, है ना? तो यहाँ आप सबको भट्ठी में इसीलिए बुलाया है कि ज्ञान की जो गहराई है वो आपके भीतर जाए। आपसे दुनिया वाले लोग प्रश्न पूछेंगे, टीचर बनना माना क्या? जैसे स्टूडेंट होता है ना, तो वो 2-4 लेसन पढ़ के बोलेगा जी ये पांच सवाल हर बार आते हैं, मैं ये पांच सीख लेता हूँ, 33% नंबर तो आ ही जाएंगे। ये क्वालिटी किसकी होती है? स्टूडेंट की होती है। लेकिन जो पढ़ाता है स्कूल में या कॉलेज में, उस टीचर को क्या करना पड़ता है? सारे लेसन याद करने पड़ते हैं, परीक्षा में आए ना आए, लेकिन उसको पढ़ाना है, पढ़ाना है तो उसके ऊपर उसको लेक्चर रेडी करके जाना है ना। तो हम बाबा के बच्चे होवनहार टीचर हैं, तो टीचर को ज्ञान की सब बातों का पता होना चाहिए। फिर हमारा जो लाइफ है वो सार्वजनिक लाइफ है। एक होता है व्यक्तिगत जीवन, मैं अपने लिए हूँ तो कोई हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन हमारा लाइफ सार्वजनिक जीवन है। सार्वजनिक माना हमसे कहीं भी कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। जैसे नेता लोग होते हैं ना, उनसे कभी भी कोई कुछ भी पूछ सकता है, उनका लाइफ सार्वजनिक माना जाता है। ऐसे हमारा है तो आपसे कोई भी कहीं भी कुछ भी बात पूछेगा, क्योंकि आप टीचर, तो आपको ज्ञान की गहराई होनी चाहिए, तब तो आप जवाब देंगे ना, नहीं तो वो पूछेगा, नहीं उत्तर आएगा तो क्या करेंगे है? एक बार मैं ट्रेन में जा रही थी, तो आजकल हमारी शिवानी बहन बहुत फेमस हो गई है ना, तो इसलिए ट्रेन में भी लोग ढूंढते रहते हैं कोई ब्रह्मा कुमारी मिल जाए, तो शिवानी से तो मिल नहीं सकते, कोई दूसरी ब्रह्मा कुमारी मिल जाए उससे मिल लें। तो लोग बहुत आते हैं, बहन जी हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, हमको कुछ सवाल पूछने हैं। अच्छी बात है ना, बिना मेहनत के लोग ज्ञान सुनने आ जाते हैं। तो ऐसे ही एक फैमिली बैठा था, मैंने उसको सुनाना शुरू किया, बाजू वाले लोग भी आ गए, उधर वाले भी आ गए, बहुत एक ही कंपार्टमेंट में इकट्ठे हो गए। तो प्रदर्शनी में ब्रह्मा विष्णु शंकर वाला चित्र है ना, वो मैं समझा रही थी, तो एक भाई ने कहा कि आपका शंकर जी भी वैसा ही है जैसा हमारा शंकर है, और आपका विष्णु भी वैसा ही है जैसा हमारा विष्णु है, लेकिन आपका ब्रह्मा वैसा नहीं है जैसा हमारा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुछ अलग प्रकार का है। अब ये सवाल तो लोग भी उठाते हैं ना, आपने इसको ब्रह्मा क्यों बना दिया, लेकिन उसने तो बड़े विचित्र ढंग से सवाल पूछा सबके बीच में, और वो भी ट्रेन में है ना। तो मैंने सोचा, मुझे पहले तो ये सवाल आज से पहले किसी ने पूछा नहीं था, तो मैं एक सेकंड के लिए चुप हो गई, बाबा के पास गई, बाबा मुझे उत्तर अभी ठीक ठीक देना क्योंकि ट्रेन में हूँ। तो देखो बाबा ने बड़ी मदद की मेरी। मैंने उसको कहा कि जब कोई आदमी रियल में मंच पर होता है, मौजूद होता है, जीवित होता है, तो उसका असली रूप लोगों को दिखाया जाता है। जब वो चला जाता है उसके बाद फिर हम उसके रूप को थोड़ा सा सजावट वाला बना देते हैं। जैसे अब आप गुरु गोविंद सिंह जी का फोटो देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे, बहुत करके उनके हाथ में वो कुछ तोता वोता और वो सजा हुआ ऐसा शरीर दिखाते। अब 24 घंटे तो वो सजे हुए नहीं रहते होंगे ना, लेकिन फोटो में आपको उनका साधारण वाला रूप दिखाएंगे नहीं, वो सजावट वाला ही दिखाएंगे। अच्छा, ऐसे ही शिवाजी हैं, उनका फोटो देखो, गद्दी के ऊपर विराजमान दिखाएंगे, हाथ में ढाल तलवार लिए दिखाएंगे, 24 घंटे थोड़े ढाल तलवार रहती होगी, लेकिन उनकी वीरता को दर्शाने के लिए वैसा ही चित्र दिखाएंगे। तो हमने उनको कहा कि ये जो शंकर जी हैं ना, ये वास्तव में साकारी दुनिया के नहीं हैं, ऊपर की दुनिया के हैं, सूक्ष्म लोक के। इस समय भारत में शंकर जी का पार्ट इस रूप में चल नहीं रहा है, सूक्ष्म में चल रहा है, और विष्णु जी भी इस समय भारत में मौजूद नहीं, वो आने वाली दुनिया में होंगे। जब आने वाली दुनिया में होंगे, आप उनको रियल में देखेंगे तो दो हाथ वाला ही देखेंगे। अब वो रियल में नहीं है, उनका एक सिंबॉलिक फोटो है, इसलिए वो चार हाथ वाली हैं। लेकिन ये जो ब्रह्मा है ना, इसका इस समय साकार में पार्ट चल रहा है, इसलिए हमने इसका वही वाला रूप रखा है जो इनका रियल रूप है। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग दाढ़ी वाले ब्रह्मा को ढूंढते ही रह जाओ और ये असली ब्रह्मा अपना काम करके चला जाए तो तुमको बड़ा घाटा लगेगा। इसलिए हमने तुम लोगों को धोखे से बचाने के लिए उस फोटो वाले रूप को छिपा करके, जो रियल में उसका रूप है, जब वो पार्ट प्ले कर रहा था, कोई आदमी चार मुंह से पार्ट प्ले नहीं करता, वो तो उसका यादगारी रूप है, उसके कर्तव्य को सिद्ध करने वाला रूप है। लेकिन जब ब्रह्मा ने रियल में पार्ट बजाया तो एक मुंह से ही बजाया, जैसे विष्णु ने जब पार्ट बजाया, नारायण ने जब पार्ट बजाया तो दो ही हाथों से बजाया, लेकिन फोटो में लक्ष्मी और नारायण इकट्ठा दिखाने के लिए चार हाथ दिखा दिए। ऐसे ही ब्रह्मा के ज्ञान को चारों दिशाओं में फैला वो दिखाने के लिए, बूढ़ा दिखाने के लिए, उन सब के लिए फोटो में उसको ऐसा दिखा दिया। लेकिन इस समय हम आपको इस ब्रह्मा से मिला सकते हैं और इस ब्रह्मा से आप वरदान ले सकते हो। दाढ़ी वाले से वरदान नहीं मिलेंगे, वरदान इसी से मिलेंगे। तो वो संतुष्ट हो गया। ये रियल बात है, क्योंकि जब आदमी वर्क कर रहा है, जैसे आज हमारी बहनें दुर्गा का रूप ही तो है ना, लेकिन वो दो हाथों से ही तो काम कर रही हैं, फिर जब यादगार बनेगा तब आठ हाथ दिखाएंगे। यादगार में चीज को बढ़ा चढ़ा के क्यों दिखाया जाता है, उसके कई कारण हैं। देखो, अगर मंदिर में ऐसी सिंपल सी ही बहन को खड़ा कर दे तो लोगों की श्रद्धा नहीं बैठेगी, ना कोई भक्ति करेगा, ना चढ़ावा चढ़ाएगा, मंदिर वाले तो भूखे मर जाएंगे बेचारे। तो वो रूप ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों को चमत्कारी लगे, लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों की आंखें उस पर स्थिर हो जाएं और लोगों को लगे कि जी ये हमसे तो कई गुना बड़ी है, इसलिए इसकी पूजा करनी चाहिए। हमारे जैसा ही रूप बिठा दें, लोग कहेंगे ऐसे ही हम ऐसी, ये हमको क्या देगी, इसलिए भाग जाएंगे। तो भक्ति काल तब चलेगा जब हमारा बढ़ा चढ़ा करके रूप पेश किया जाएगा। दुर्गा ने जी एक ही फुकार मारी और 100,000 राक्षस मर गए, तब भगत कहेगा ये जोरदार देवी है, इसकी पूजा करनी चाहिए। अगर वो रियल में बताए कि इसने चार बार कोर्स कराया फिर भी जिज्ञासु नहीं टिका, तो वो कहेगा मैं काहे को इसकी पूजा करूं। तो वो, ये तो हमारा पुरुषार्थी रूप है ना, अभी फिर वो फाइनल रूप आएगा तो उस फाइनल रूप की ही मूर्ति बनेगी और फिर वही भक्ति मार्ग में पूजी जाएगी, है ना। अभी 5 मिनट बाकी हैं, चलो अपन योग करते हैं। 7:30 का रिकॉर्ड बजेगा पूरा कर।
ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो